أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں ہمارے فہم میں ہمارے جز میں برکت دے اور پھر اس کے بعد ہمارے عمل میں تقوی میں اور بات کو سن کر ماننے میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے آج ہم 26 پارے کو کنٹینیو کریں گے سورۃ محمد کے شروع سے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر 26 پارہ پارے قرآن 2023 ڈی کیو 2023 آج اس میں سے 26 پارے کی دوسری سورت سورت محمد سے ہم شروع کریں گے. ہم دیکھ چکے کہ اس پارے کے اندر جو تھیم ہے وہ صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے ایک اشارے پہ نکل پڑتے تھے, سمعنا و اطعنا کی وہ ایک عملی تفسیر تھے, اور انہوں نے اپنے ایک ایک عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اطاعت کا اجر عبادت کے اجر سے زیادہ ہے. یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ سورت فتح کے ساتھ لیں گے. اب چلتے ہیں سورت محمد پہ اور پارے کی شخصیات 1400 کمپینینز کے جو ایک اشارے پہ چل پڑے اور اس کے بعد بھی جو اللہ کے نبی نے کہا کر دیا, جہاں روکا وہاں رک گئے. اللہ ہمیں سمع و اطاعت کے اس اصول کو عام کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ محمد ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر سورہ ہے, 38 آیات ہیں. اس سورۃ کا ایک دوسرا نام سورۃ قتال بھی ہے, اور یہ بھی انہی صورتوں میں سے جس پہ کافی اعتراض ہے کہ وہ بدل ہو, بدل دو اس کو, یا پی ابھی تی قرآن ابھی غیری حاضہ. تو اللہ نے جو باتیں کہہ دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضلوا اعمالهم. اب دیکھ رہے ہیں کہ صورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ہے, نتھنگ ایلس. الذین سے شروع ہو رہا ہے. پہلا رکوع آیت 1 سے 11 ہے, رکوع نمبر 5 ہے پارے کے اعتبار سے. دین حق کی پیروی کرو. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا, اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے, اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے, اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرما دی. لکھ لیجئے, سورت محمد میں خبت اعمال کا ذکر ہے. اعمال کے ضائع ہونے کے لیے دو ٹرمز آتی ہیں, ایک تو ہوتا ہے حبت اور ایک ہوتا ہے بطلا. تو بتیلو اعمالکم, دونوں میں فرق ہے, گنتے جائیے, کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی. یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی تباہ کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے. جب کفار سے آپ کی مٹھ بھیڑ ہو جائے, یعنی آمنا سامنا ہو جائے, تو گردنوں پہ وار کرو, یہ نہیں کہ مسلح کر کے ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دو اور بعد میں وہ ہینڈی کیپ بن کر اپاہج شہری کی طرح زندگی گزاریں. ظاہر ہے کہ جو میدان جنگ میں آ گیا ہے تو اس کو کیا کرو, پیار سے دعوت دو, گیو می پرمیشن, کین آئی ٹیک دس دس. پہلے تو پوری پیشبندیاں کر دی, لیکن جب کوئی میدان میں آ چک گیا تو پھر اس کو مراد یہ ہے کہ ٹارچر دیے بغیر سیدھا اس سر کو قلم کر دو جس سر میں اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی بھری ہو. اور جو مسلمانوں کو بھی مارنے آیا ہے وہ کوئی صلح کا پیغام دینے آیا بھی نہیں تھا. اور جب ان کو اچھی طرح سے کچل ڈالو, تب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کر لو. پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ دے کر. تا وقتے کی لڑائی اپنے ہتھیار رکھتے, یہی حکم ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا, لیکن اس کی منشا یہ ہے. یا اس کی خواہش کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے لے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں, اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا, انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا, اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں پہلے سے شناسا کر دیا ہے. جنتی جنت میں جا کر اپنے گھر کو اس سے بھی زیادہ آسانی سے پہچان لے گا جتنی آسانی سے آپ اپنے گھر پہ آتے ہیں. کچھ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی گاڑی خود بہت گھر کی طرح گم جاتی ہے. جانا کہیں اور ہوتا ہے تو ادھر گھوم جاتے ہیں جہاں روز بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں. فطرت ہے انسان کی, جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ کی نیم پلیٹ وہاں لگی ہوئی ہے, آپ کے گھر کے سامنے آپ کا نام لکھا ہوا ہے. بیعت کے ساتھ اپنا نام لکھ لیں, یہاں تو لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں نا گھروں کے, तो आपने नाम कैसा लिखे, बहते रेहाना, बहते सबा, बहते समीना, कैसा लग रहा सुनकर? अल्लाह अकबर। और हम सब मिलने आएंगे आप सबसे अगर हम वहाँ पहुँच गए तो। लेकिन कुछ काम करने हैं, उससे पहले ज़रा सा रिलैक्स होके सुनिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद करेगा। सबसे खूबसूरत आयत है ये, मुझे तो पूरे कुरान में से सबसे प्यारी आयत यही लगती है। ना अल्लाह को आपकी ज़रूरत, ना मेरी ज़रूरत, ना अल्लाह के दीन को आपकी ज़रूरत, ना मेरी ज़रूरत। इट्स एन ऑनर अल्लाह सुब्हान तआला इज़ ऑफरिंग अस, दैट्स इट। अल्लाह ने मच्छरों से अपना काम ले लिया, बबीलों से अपना काम ले लिया, अल्लाह ने जिब्राइल के एक पर से पूरी कौम को उठाकर ज़मीन के अंदर फेंक दिया कि आज भी वो बहरे मुर्दार के अंदर है, बाहर नहीं है। तो क्या ये मेरी बेरी आपकी टूटी फूटी कोशिशों की अल्लाह को ज़रूरत है? नेवर एंड नेवर। आयत 7 का तावीज़ बना के इसको अमल का हिस्सा बना लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। दो फ़ायदे हैं इसमें, एक तो ये कि तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे करेगा, और दोनों हाथ उठाकर इसकी गवाही दे सकते हैं वो लोग जो इस रास्ते के राही हैं। आप और मैं अपने काम क्या करेंगे जो फिर अल्लाह आपके करता है? आप और मैं अपने बच्चों के क्या रिश्ते ढूंढेंगे जो अल्लाह ढूंढता है? और सोहन, शर्त एक है कि आप अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, कोई और मोटिव ना हो, किसी और नाम को ना ले रहे हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हें साबित कदम रखेगा। दीन की तरफ आने के बाद एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है फिसलने का। जब बर्फ़ पड़ती है ना तो फिसलन हो जाती है, ग्लत कहते हैं उसको। बहुत सारे लोग डरते हैं कि खाम को कुछ होगा, ये है जूते भी स्पेशल, उनके नीचे कील भी लगा देते, फर्श होते हैं बाहर गवर्नमेंट उस पर बजरी डाल देती, नमक छिड़क देती ताकि बर्फ़ पिघलती रहे। इसके बावजूद लोग डरते हैं कि हम फिसल ना जाएं। लेकिन ऐसे ही लोग दीन के नाम पे सबसे जल्दी फिसलते हैं। मैंने देखा जितनी दुनिया की ऐश है, जितनी ताइश है, जितनी दुनिया की सहूलत है, उतना बंदा ज़्यादा फिसलता है, यानी अच्छे जूते पहनने पे ज़्यादा फिसलते हैं। हम दुनिया के फिसलने को तो इतना सोचें कि हड्डी टूट गई तो हैंडीकैप होके बिस्तर पे पड़ जाएंगे। कभी हमने ये सोचा इन नेमतों में जब नेकियों के लिए नहीं निकल रहे, इसके लिए दीन को लिए लेके निकले तो क्या हमारी हड्डी पसलियाँ सलामत? जुर्मे अजीम है आज, क्रिमिनल्स हैं वो लोग कि जो चारों तरफ उल्टे सीधे नारे दावे सुन रहे हैं, आपके बच्चों के बाहर निहागनों से लेके आपके बच्चों के डे केयर से लेकर चारों तरफ दुश्मन अपना वार किए हुए, और हम सो रहे हैं। टाइम ही नहीं है, फर्ज नहीं करता, मुझे सूट नहीं करता। घर बैठो तुम अल्लाह की ज़रूरत नहीं हो, इतनी बेनियाजी है इसमें। और आप देखिए तुम्हें साबित कदम रखेगा इस पर तो कभी किसी ने तवज्जो भी नहीं की होगी। इस्तकामत आती ही काम करने से है। आप चलते जाइए, अल्लाह आपको संभालेगा। आप थकने लगते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सांस फूल गया, अच्छा चाय पानी पी लो, ये लो कैंडी खा लो, फिर सांस बहा लोगे, फिर चल पड़ो। आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, सोचिए ज़रा इमेजिनेशन में लाएं। अब आप चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आपको 2 किलोमीटर ऊपर जाना है। 1 किलोमीटर के बाद आपकी हिम्मत जवाब दे गई, ये पहाड़ी है, अब आप इस पर चढ़ रहे थे। अब जब आप इसके ऊपर चढ़ के अभी इधर पहुँचे हैं ना तो आप थक गए। याद रखिए शुरू में भागने वाले बाद में थकने लगते हैं, और वही थकता है जो सुनता नहीं है, जिसके अंदर ये ईमान का बीज नहीं जाता। वरना अगला पारा तो देखिएगा आपको फास्ट फॉरवर्ड पर दौड़ाएगा, फिर इल्लाह सुनेंगे तो भागेंगे ना। तो सुनते हैं वो तो आके पूछते हैं बताएं क्या करना है, और जिनसे आप पूछे सुनाए आप सुन रहे हैं नहीं मैं इस दफ़ा मैं कुरान पढ़ रही हूँ। भाई क्या पढ़ रहे हो आप? तरावी पढ़ रही हूँ। ये कर रही, तो क्या हरकत आ रही है? रिजल्ट क्या आपका? आपकी मूवमेंट बता रही है कि आप किधर खड़े हैं, और सारी दुनिया आपको कह दे उल्टे जूते पहन के फिर जाइए, आपसे अल्लाह काम वही लेगा जिसके लिए आप तैयार होंगे। ना लोगों की दुआएं आपको फ़ायदा देंगी, ना आहें फ़ायदा देंगी, ना लोगों की कुर्बानियां और हिजरतें जो आपके लिए वो कर गए वो नहीं फ़ायदा देंगे जब तक आपके अपने अंदर आग नहीं लगेगी। छिपकली आधे बिस्तर के बाद देखिए हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं, नींद आती है, उछल के कूद के बाहर दरवाजे के पास पहुँचे होंगे। एक कॉकरोच बहुत है हमारी जान की लाले पड़ जाते हैं हमें। तो जब आप इधर आते हैं तो आप थकने लगते हैं ना, क्या करूँ? आप कहते हैं नो मेरे से और नहीं जाए, मैं और वापस जा रही हूँ। आप अगर आप यहाँ से वापस पलटेंगे तो फिर 1 किलोमीटर चलेंगे ना, तो यही 1 किलोमीटर इधर की जब ऊपर चलते हैं तो कहीं ना कहीं पहुँच जाते। लिखिए एक जुमला, दीन के रास्ते में जब आप थकने लगे, अकने लगे, खपने लगे, बोर होने लगे, कब तक आखिर मामा, कब तक बेगम, कब तक? एक आवाज़ें भी बाहर हमारे इर्द गिर्द ऐसी हिजबे इख्तलाफ की चलने लगती हैं, ये तो ज़्यादा तेज़ करती हैं। ये आवाज़ें आपका टेस्ट होती हैं, बीपी चेक हो रहा है। आपने देखा जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पुश पुश, अंदर से जब लगता है ना अब दिल फट जाएगा, रिलैक्स्ड। फिर वो कहते हैं थोड़ी हिलना नहीं, जरा आपकी सुई ठीक आ ले, टेक अ ब्रेक, स्टॉप कर लीजिए, थोड़ी स्लो हो जाए, हल्के हल्के चलते रहें। यहाँ बैठेंगे ना तो थोड़ी देर सांस बहाल होगी, फिर आप कहेंगे चलो पीछे भी तो 1 किलोमीटर जाना था ना, आगे चलती हूँ। और आपको पता भी नहीं चला गया, एक दिन आप केटू पहाड़ पे खड़े होंगे, माउंट एवरेस्ट पे खड़े होंगे, आप असाबिकून अलव्वलून में होंगे, तो दूसरों की हिम्मत बंधाइए, इस बिरु साहब बिरु पर रहा भी तुम। कहते क्या के सबको पता है, पता नहीं होता, हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। हम सब एक दूसरे से मोटिवेशन लेते हैं, और याद रखिए एंड पे सिर्फ वही मंजिल पे पहुंचेगा जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होगा। कब तक आप दूसरों के चार्जर बोरो करेंगे? गिव मी चार्जर प्लीज़, आपके पावर बैंक है, ज़रा अपनी तार दें, एक दिन तो शर्म आएगी। आप कहते नहीं अपनी खरीद लो। एवरीबॉडी शुड बी स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फुट। हमारे वालिद कहते थे कि दरख्त हमेशा अपनी जड़ पे खड़ा होता है, जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है बाहर से जितने मर्जी सहारे दे दो, इधर कर दो उधर कर दो, वो खड़ा तो रहेगा लेकिन ग्रो नहीं करेगा। तो मुझे सहारा जानने वालों, अगर मैं लड़खड़ाया तो किधर जाओगे? ये है अल्लाह का पैगाम। इसलिए अपनी कब्र को खुद रोशन करवाइए, अपने पुल सरात के ऊपर से गुजरने की सवारियां ढूंढ लीजिए। कैसे? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम और वयुसब्बित अक़दामकुम। आप में से कोई शेकी हो रहा है अगर, और काम करें। कील को ठोकते हैं इस दीवार में, आप ये दीवार है, आप इसमें कील ठोक रहे हैं, प्यार से सहलाते रहे सहलाते रहे। आप पूरा दिन खड़े रहेंगे सहलाते रहेंगे, वो नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा अंदर चला जाए, घड़ी तो छोड़ दीजिए आप, एक छोटा सा कोई धागे में लटका हुआ कागज़ का पीस, गत्ते का टुकड़ा डालेंगे ना ये गिरेगा। क्या करें? ठुक, एक दफ़ा ठोकें, ये है युसब्बित अक़दामकुम। एक दफ़ा ठुक जाएं फिर आपको अल्लाह थाम लेगा इंशाल्लाह, फिर घड़ी को भी थाम लेंगे आप। बड़ी बड़ी स्क्रीनें पड़ी होती हैं तो बातचीत, कच्चे घड़ों को छोड़ दीजिए, आप पक्के होंगे ना फिर दूसरों के लेंगे। और जो लोग काफिर हुए, यानी ना शुक्रे हुए, इनकारी हुए, उनके लिए हलाकत हो, अल्लाह इनके अमल गारत करे। यानी देखिए बददुआइया कलेमात है, जो की कराई थी ना उस पर भी पानी पड़ जाता है, एक वक्त आता है बंदे को यकीन ही नहीं आता, मैं इतना आगे चली गई थी, हाय मेरे बगैर काम नहीं होता था, मेरे पास चाबी होती थी, हाय मैं ऐसी थी मैं वैसी थी, मैंने अपना सारा जेवर दे दिया था, हाय मुझे उस दिन क्या हो गया था। फिर हिम्मत ही नहीं बनती। कभी आप बड़े बंदों से पूछिए, अपनी जवानी के हौके भर रहे होते हैं, हाय हम तो ऐसे करते थे, हमारी माँ तो सर पे घड़े डालकर वो कश्मीर की पहाड़ियों से उतरती थी, अब तो यहाँ से उठ के बाथरूम में जाना मुश्किल है। तो याद रखिए जिस्म की कमज़ोरियाँ वक्त के साथ आती हैं, लेकिन उन लोगों को वो कमज़ोर नहीं करती जिनके इरादे पुख्ता हैं, उनको मंजिलें बुलाती हैं। इसलिए कि अल्लाह की नाजिल करदा चीज़ से नाखुश हुए, ये उम्मत मुस्लिमा पे एक नोहा है। तुम्हें अल्लाह ने दिया क्या है सोचा कभी तुमने? पकड़ी होती कोई और किताब, देखिए उन मज़हब वालों के लिए वो बाइज्जत किताबें हैं, हम उनको कोई बुरा नहीं कहते, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम चंद किताबों को सोच लीजिए दिमाग में कि वो पकड़ी होती, कहीं कोई जप रहे होते, कहीं कोई भजन गा रहे होते, कहीं कहीं आप मविलव जीसस के नाम पे स्लीप के ऊपर खड़े होते, कैसा लगता? और ये छोटा मामला नहीं है, आपकी मेरी जन्नत या जहन्नम है, फरीकुम फिल जन्ना व फरीकुम फिस सईर, कल का दिमाग से जुमला गया ही नहीं, इधर और दैट्स इट, बस या इधर या उधर, आप और मैं बीच में नहीं लटकेंगे। बस अल्लाह ने भी इनके अमाल ज़ाया कर दिए हैं, क्या इन लोगों ने ज़मीन में चल फिर कर इसका मायना नहीं किया कि इनसे पहले के लोगों का क्या नतीजा हुआ? अल्लाह ने इन्हें हलाक कर दिया, और कुफार के लिए इस तरह की सज़ाएं हैं, वो इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज़ यानी वली अल्लाह खुद है, और इसलिए कि कुफार का कोई कारसाज़ नहीं। अबू सुफियान नबी सल्लम का सामना करते हैं, और जब उनको अभी ईमान नहीं नसीब हुआ, ग़ज़वा उहद था, और सब तरफ खबरें फैल गई कि मुसलमान ज़ख्मी हैं, अल्लाह के नबी भी और ये भी, खामोशी थी। अबू सुफियान ने एक पुकार लगाई जिसको आप कहते हैं जय हुबल, जय कहते हैं अल्लाह अकबर जैसे बड़ी तकबीर। ये चूँकि अभी कुफर पे थे ना, इन्होंने आवाज़ें लगाई अपने माँ बाप, फिर उन्होंने कहा हल्फीकुम मोहम्मद, हल्फीकुम अबू बकर, हल्फीकुम उमर, कोई ना बोला, कहा जय हुबल, सब ख़त्म। जब उसने जय दूसरे की ना शिर की अकलमा, तो अल्लाह के नबी ने कहा इसको जवाब दो, फिर आपने कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, लिख लें मोमिनों का मौला अल्लाह, मोमिनों का नसीर अल्लाह, वकील अल्लाह, कुफार का कोई नहीं है। झूठे सारे नकली नोट लेकर जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको शॉपिंग कैंट पे कि दी जाइए ये नोट नहीं चलना इधर, सिर्फ जाली नोट है। झूठे सहारे जालसाजी हैं ये, कल क़यामत के दिन ना सिर्फ ये कि चलने नहीं बल्कि आपको पकड़ाएंगे कि ये आपने नकली नोट लिया किधर से, इधर तो आइए। आप हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। युहादिउन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, अल्लाह अकबर कबीरा। तो क्या पता चला, आयत एक में मुशरिकी ने मक्का का नाम लेकर क़यामत तक के लिए हर शिर करने वाले के किए किराए नेक आमाल की बर्बादी का पैगाम है। मस्जिद हराम को आबाद करते थे, नेकी थी, हाजियों को पानी पिलाते थे, बहुत मेहमान नवाज थे, मगर कुफर के साथ इनकी नेकियां कबूल तो क्या होनी थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। फिर सहाबा किराम पर दो इनामात हैं अल्लाह ताला के आयत 2 के अंदर। नंबर एक, ज़माने जाहिलियत के गुनाह माफ़ हो गए और इनके किरदार और इनकी सीरत को अल्लाह ने बदल दिया। आप में से हर एक ज़रा पीछे मुड़कर देखे, कहाँ थी आप, मैं कहाँ थी, हम सब ज़िंदगी में कहाँ खोए हुए थे। आप में से सब मुख्तलिफ लेन से आए हैं, आप में कोई गुनाहों में तेज़ होगा, कोई फैशन में तेज़ था, कोई बेपर्दगी में था, कोई गाने गाता बजाता नाच डांस अरेंज कराता था, कुछ ने तो ऐसी पार्टियाँ की होंगी कि उसके ऊपर उम्र करने की अब ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह आज आपको ले आया, ये हुआ आपके साथ, आहिस्ता आहिस्ता आपके सीरत बदल गई। अब तो शीशे में आपको अपना चेहरा भी नहीं कभी कभी पहचान में आता होगा, कोई पुरानी दोस्त कहीं मिले कहेगी ये तुम हो, तुम्हें क्या हो गया, ये नेमत है अल्लाह ये अता करता है। फिर आयत 2 के ऊपर एक रिवायत है सही मुस्लिम की, 321 अमर बिन अलास से रिवायत है, कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास आया, मैंने कहा अपना दायां हाथ बढ़ाइए, यानी इस तरह से ये दायां हाथ, ताकि मैं बैत करूं आपसे, आपने फरमाया अपना हाथ बढ़ाया, कहते मैंने अपना हाथ खींच लिया। कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे क्या हुआ, कहा मैं इस शर्त पर बैत करूंगा और वो क्या है कि मेरे जो पिछले गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएं। आपने फरमाया अमर क्या तू नहीं जानता कि इस माजी के गुनाहों को इस्लाम गिरा देता है और इसी तरह हिजरत पुराने गुनाहों को मिटा देती है। अल्लाह हमें हिजरतें करने वाला भी बनाए और आइंदा के लिए जमने वाला भी बनाए। तो क्या पता चला कि पिछला खाता क्लियर, आप में से कितनों के अकाउंट्स क्लियर होंगे इस दौरे कुरान में, चंद दिन रह गए हैं, पिछले सब फाइलें आपकी डिलीट हो गई हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह करे कि आपके मेरे पिछले किए कराए पे सब अल्लाह ताला कल में अफ डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। फिर दीन की मदद की जब बात थी तो सहाबे कराम को अल्लाह की मदद कैसे आई या क्यों आई, किन खूबियों के बिना पे आई। नंबर एक, उन्होंने अल्लाह के दीन की इशाअत की। हम तो बता भी सके तो नहीं बताते, कितने का एक फ्लायर छपता है, कितने का एक प्रिंट आउट आता है, और एक पेज के चार काट के अगर चार लोगों में से किसी एक को भी अल्लाह ले आया तो आपकी तो सारी मेहनत वसूल। फिर उन्होंने अल्लाह के नबी का मिशन का साथ दिया, अल्लाह के दीन को गालिब किया, कुफर को मिटाने की खातिर लोगों से लड़े, नाते भी पढ़ी उन्होंने, दरूद भी पढ़े, दरूद के नाम पर उन्होंने नबी से मोहब्बत भी की, लेकिन सिर्फ ये नहीं किया। आज हमारा हाल है कि हम सिर्फ नात पढ़ के जन्नत लेना चाहते हैं, सिर्फ सुन्नतें 12 जो है वो रक्तों के आगे पीछे करने पे जन्नत लेना चाहते हैं, ये अमली जन्नत है, इसके बगैर जन्नत नहीं मिलती। नबी के मिशन के राही बनिए। आपकी मेरी नमाज रोज़ा हज हमें यही सबक देती है कि तुम अल्लाह के रास्ते के राही बन जाओ। सहाबा ने सिर्फ अगर नमाज़ें पढ़ी होती कभी ना पता चलता कि रदी अल्लाह अनहु व रदवान थे कि नहीं। ये दीन के रास्ते की भाग दौड़ बताती है कि अल्लाह आपसे राज़ी है कि नहीं, तो आपने मैंने क्या करना है, अल्लाह की राह से नहीं रोकना। कई दफ़ा हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कभी नोइंगली और कभी अननोइंगली अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, छुपा लेते हैं, पता होती है बात नहीं बताते, नहीं, फिर लोग उधर चले जाएंगे, फिर मेरे पास नहीं आएंगे, नहीं, बस मैं भी तो कर रही हूँ। भाई आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि जो आप करें वो एनफ है, तो बात को ख़त्म कर दें इधर ही। फिर इसी तरह से बातिल का डट के मुकाबला करना है, अल्लाह की राह में शहीद होने की ख्वाहिश करनी है तो ये ख्वाहिश भी नहीं है मौ की, अल्लाह के दीन की मदद करनी है, लोगों के बुरे अंजाम से डरना है और अल्लाह को अपना कारसाज़ मानना है। रुकू नंबर 6 आयत 12-19, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू, नेक मजलिसें मोहर वाले दिलों को फ़ायदा ना देंगी। जब दिलों में मोहर लग जाती है ना तो बंदा इल्म की मजलिस से भी कुछ नहीं लेके उठता, तरावियों से भी कुछ नहीं लेके उठता, तहज्जुद से, शबीनों से, क़ियामुल लैल की दुआओं से भी कुछ नहीं लेके उठता। लेकिन असल बात ये कुरान है, जो आपको समझ आएगा तो दिल की दुनिया बदलेगी और दुआएं भी फिर ही कबूल होती हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इन्हें अल्लाह ताला यकीनन ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और जो लोग काफिर हो गए वो दुनिया ही का फ़ायदा उठा रहे हैं और मिसल चौपायों के खा रहे हैं। इनका असल ठिकाना जहन्नम है। ये जो जानवरों की तरह खाना है, ये क्या है? खाना खाना खाना, नेकी का भी काम हमारे खाए पिए बगैर नहीं होता। क्या कहूँ, हमने कितनी बस्तियों को, जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज़्यादा थी जिससे तुझे निकाला, हमने इन्हें हलाक कर दिया, बस इनका मददगार कोई ना उठा। क्या बस वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो, इस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए इसका बुरा काम मुजयन कर दिया गया हो, यानी खूबसूरत बना दिया गया हो, और वह अपनी नफसानी ख्वाहिशों का पैरोकार हो। इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं, और दूध की नहरें हैं जिनका मज़ा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और नहरें हैं शहद की जो बहुत साफ़ हैं, और इनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं, और इनके रब की तरफ से मगफरत है। क्या ये मिसल उसके है जो हमेशा आग में रहने वाला है और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा? सोचिए, जो इनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। मिर्चें तो रोज़ ही खाते हैं, अब तो हमारी मिर्चों से भी हमारी आंतें नहीं जलती। कभी कोई कड़वी चीज़ खाई हो, स्पाइसी खाई हो, और बाद में वो स्टमक में जो दर्द होता है और पता चलता है कि अब ये खाना कहाँ पहुँच गया, उसको जहन में लाकर इस आयत को सोचिए, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और इनमें से बहुत ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से पूछते हैं, इसने अभी क्या कहा था? इतनी तवज्जो तो कहीं और थी, सुन तो रहे नहीं थे। कहीं जाके एकदम लोगों ने कुछ कहा तो कहा, क्या बात हुई भाई, आपने नहीं सुनी? नहीं, वो मैं मैसेज चेक कर रही थी, वो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, वो मैं ज़रा ईद का जोड़ा देखने लग गई थी, ज़रा ऑनलाइन शॉपिंग साथ करने लग गई थी, तवज्जो ही नहीं थी। तो ऐसे लोगों को तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कोई बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी है। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी। याद रखिए, कुरान की महफिल में झुक के बैठे हैं, अलर्ट होके बैठे हैं, या आप मोमबत्ती की तरह पिघले हुए हैं, जहाँ जो पोस्चर होगा वैसे ही जम जाएंगे बाद में। कमर अकड़े, सीने पे हाथ बांधे, टांग पे टांग रखे, यही अकड़ जाएंगे, ऐसे स्टैचू बन जाता है। इस महफिल में बैठ के फैसले किया करें, कोर्स करना है कि नहीं करना, मजीद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वॉलंटियर करना है कि नहीं करना, आगे और बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, इधर फैसला करें। इधर से वो बाहर रिसेप्शन तक जाते हुए टेम्परेचर माइल्ड हो जाता है, और ऊपर जाकर तो फिर कोल्ड होने लगते हैं। अल्लाह हमें सही फैसले करने की तौफीक दे। और वह अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और जो लोग हिदायत याफ्ते हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया। ये नोट कीजिए, भूख जितनी बढ़ा ले बढ़ जाएगी, नींद जितनी बढ़ा ले बढ़ जाएगी, हिदायत की तलब जितनी बढ़ा ले उतनी बढ़ जाएगी, और इन्हें इनकी परहेजकारी अता फरमाई है। तो क्या ये क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इनके पास अचानक आ जाए? यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर जब के इनके पास क़यामत आ जाए, इन्हें नसीहत करना कहाँ होगा? बस ऐ नबी, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपनी लग्जिशों की बख्शिश मांगा करें, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक़ में भी। अल्लाह तुम लोगों की आमदोरफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। यहाँ खाने पीने की बात हुई चौपाइयों की तरह, आयत 12 में तो रिवायत है सही बुखारी की 5396, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, मुसलमान एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है। ये एक प्रैक्टिकल वाक्या हुआ था, उस पर बात है। यानी मुसलमान थोड़ा भी खा लेता है उसका पेट भर जाता है, और कुफार बार बार स्नैकिंग, चिट चैट, दिन के 5-6 मील छोटे बड़े, क्योंकि मकसद ये है ना खाना पीना। और अपने बच्चों को भी खुदा रहा इसकी आदत ना डालें, अभी बिस्किट दे दिया, थोड़ी देर में चिप्स दे दिया, फिर जूस का डब्बा दे दिया, चुर 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 कर रहे हैं, फिर उनको वॉशरूम जाना होगा। ना करें, ये अच्छी आदतें नहीं है। हर वक्त खाना खाना खाना, दिन में बस 2 दफ़ा आपका किचन खुलना चाहिए, फौजियों के किचन की तरह मेस बना लें इसको। हमारा किचन मेस ही क्यों होता है? हर वक्त अब चाय, अब पानी, अब खाना, अब दोपहर, अब ये रात, अब वो, हम इसके लिए नहीं आए। जितनी इन चीज़ों में तवज्जो बढ़ेगी उतना दूसरी तरफ से तवज्जो कम होगी। फिर इसी तरह से 15 नंबर आयत के अंदर एक और रिवायत है बुखारी की 7423, आपने फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, नमाज कायम की, रमज़ान के रोज़े रखे, तो अल्लाह पर हक है कि इसे जन्नत में दाखिल करें। किसने अल्लाह के ऊपर ये ज़बरदस्ती की? किसी ने भी नहीं, खुद अल्लाह ने। ख्वाह इसने हिजरत की हो या वही मुकीम रहा हो जहाँ इसकी पैदाइश हुई थी, साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या हम इसकी इत्तला लोगों को ना दे दें? आपने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किया है। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। बस जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वह दरमियाने दर्जे की जन्नत है और बुलंद तरीन, और इसके ऊपर रहमान का अर्श है, और इसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। आपकी मेरी भाग दौड़ के मुताबिक 100 दर्जे होंगे। अब अगले पारों में आप यही पढ़ने लगे हैं। जितनी मेहनत कर ले उतनी कमाई। एक रिक्शा चलाने वाला 2 घंटे चला ले या 4 घंटे चलाए या 10 घंटे चलाए, जितना वक्त ज़्यादा चलाएगा उतने पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। आपके लिए, मेरे लिए, इस दुनिया में आप नेकियों के मौके, अभी कलम चल रहे हैं, अभी किरामन कातबीन लिख रहे हैं, अभी हमारा नामा अमाल बंद नहीं हुआ। जिस वक्त फरिश्ते ने ये नामा अमाल हमारे हाथ से ले लिया और छीन दिया और कहा बस ख़त्म, इकरा किताब खोलो पढ़ो, तो उस वक्त समझ आ जाएगी। फिर इसी तरह एक और रिवायत आयत 19 में, इबलीस ने अपने साथियों से कहा कि तुम इंसान को कैसे फिसलाते हो, यानी तुम्हारी प्रैक्टिस क्या है अगवा करने की। उन्होंने कहा, हम हर तरह से इसे फिसलाते हैं। इबलीस ने कहा, क्या तुम इस्तगफार के ज़रिए इन पर हावी होते हो, यानी इस्तगफार से रोक कर। उन्होंने कहा, हाय अफसोस, इस्तगफार तो तौहीद से जुड़ा हुआ है, इससे कैसे रोकें। इबलीस ने कहा, मैं इनके दरमियान ऐसी चीज़ें राइज कर दूंगा जो इसकी मग़फ़रत तलब नहीं करेंगे। चुनाचे इसने वो चीज़ें ख्वाहिशात की सूरत में फैला दी। आपने सुना भी नहीं और इतनी बड़ी बात गुजर गई। ख्वाहिशात नफसानी, ये हैं जन्नत से दूर करने वाली चीज़ें। और आप A to Z लिस्ट बनाएं दीन और दुनिया के रास्ते में बहकने की, पीछे कहीं ना कहीं कोई ख्वाहिश होगी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। पिछली ख्वाहिश पूरी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था? ख़त्म। एक दफ़ा आप वो सूट पहन लें जिसके लिए आपने महीनों जिहाद किया था, शौहर से कितनी लड़ाइयाँ मोल ली थी, दर्जियों से कितनी मुँहमारी की थी, ड्राइवर को कितने फेरे लगवाए थे बुटीक के कि पूछो हो गया नहीं हुआ, कितनी दफ़ा बदजुबानी भी होने पे आ गई। एक दफ़ा बस वो जोड़ा पहन ले, एक दफ़ा। और मज़े की बात है, कोई आपकी तारीफ ना करे, कोई ना पूछे कहाँ से ले, कोई ना कहे कि आप शहजादी लग रही हैं। आप पकड़ के उसको भिन्न में फेंकेंगी कि दो दो इसको, ले जाए कोई मेरे से, मुझे नहीं चाहिए। ख्वाहिशात है। असल बात पता क्या है? ये कुछ भी नहीं है। बस आप अगर एक मकसद के साथ जीते हैं ना, तो आपकी हर ख्वाहिश भी खूबसूरत तरीके से मेंटेन होती रहेगी। फिर इसके बाद इस्तगफार की चूँकि बात हुई, तो उसकी अहमियत है, इससे दर्जात बुलंद होते हैं। कुछ नेमतें अमल से नहीं मिल पाती, वो इस्तगफार से मिल जाती हैं। आजजी और नरम दिली पैदा होती है, यानी बंदा अपने आप को छोटा समझता है, अल्लाह को बड़ा समझता है। और अबू हुरैरा से एक रिवायत अल्लाह के नबी से सुना, आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं एक दिन में अल्लाह ताला से 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तगफार और तौबा करता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है, 2071 नंबर। क्या सीखा? जन्नत की चाहत में नेक अमाल करने हैं। यकीन रखना है कि अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। नफसानी ख्वाहिशात के पैरोकार नहीं बनना। दाई इल्लाह की बातों को बुरी नीयत से नहीं सुनना। कई लोग ग्रज के साथ सुन रहे होते हैं, ये क्या बात है, वो क्या बात है, ऐसी है क्या है। तो ये दुआ क्या करें कि मुझे अल्लाह हिदायत के लिए सुनने वाला बना दे। फिर बंद दिलों और बंद जहनों से अल्लाह के कलाम को नहीं सुनना। मोमिनों के हक़ में दुआ मग़फ़रत करनी है, अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 20 से 28, इक़्तदार का गलत इस्तेमाल। वयकूलुल्लज़ीना आमनु लौला नुज़िलत सूरा, और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कि कोई सूरत क्यों नाजिल ना की गई। फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और उसमें क़िताल का जिक्र किया जाता है, तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखने लगते हैं जैसे उस शख्स की नज़र हो जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो। बस अफसोस इनके हाल पे, फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना। ये नोट कीजिए, समाओ इतात, सुन लिया और मान लिया। फिर जब काम मुकर्रर हो जाए, तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये भी वाइद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ दो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार है और जिनकी समात और आँखों की रोशनी छीन ली है। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन, क्या ये कुरआन में गौर व फिक्र नहीं करते? अमला कुलूब नक़फ़ालुहा, ये इनके दिलों पर इनके ताले पड़ चुके हैं। तदब्बुर के, गौर व फिक्र के मौके आते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं, ये इधर उधर देख रहे होते हैं, ये उसको सुन, उससे पूछ, उससे देख, अच्छा ज़रा बीच में ये कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कुरान को तदब्बुर के बगैर सुनना इंतहाई खतरा है। जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए, इसके बाद इनके लिए के हिदायत वाज़े हो चुकी, यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके फेल को मुज़य्यन कर दिया और इनको ढील दे रखी है। ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से, जिन्होंने अल्लाह की नाज़िल करदा वही को बुरा समझा, ये कहा कि हम भी अनकरीब बाज़ कामों में तुम्हारा कहना मानेंगे और अल्लाह इनकी पोशीदा बातें खूब जानता है, बस इनकी कैसी दुर्गत होगी। मौत का वक्त याद कीजिए उनका, जबकि फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ कर रहे होंगे, इनके चेहरों और इनकी पीठों पर मारेंगे, ये इस बिना पर कि ये वो राह चले जिससे उन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और उन्होंने इसकी रजामंदी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने इनके अमाल को गारित कर दिया। बाद में नोट करिएगा कि इसमें कितनी दफ़ा हफ्ते अमाल का जिक्र है। क्या पता चला, दिलों को खोलने का इलाज कुरान को तदब्बुर से पढ़ना। कुरान दिलों के जंग को ख़त्म करता है। आपने मैंने क्या करना है, तदब्बुरुल कुरान करना है। दीन में आजमाइश से पीछे नहीं हटना, अल्लाह के हुक्म पर समेना व ताना का मुजाहरा करना है, अल्लाह ताला के साथ सच्चे रहना है, इख्तियार को गलत इस्तेमाल नहीं करना, अल्लाह के दीन से नहीं फिरना और अल्लाह की रज़ा को पसंद करना है। आगे जी आखिरी रुकू सूरत मोहम्मद का, रुकू नंबर 8, 29 to 38, बखीली और कीना अल्लाह को सख्त नापसंद है। अम खसिबल्लज़ीन फ़ी कुलूबिहिम मरद, क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ रखा है कि अल्लाह इनके हसद और कीनों को जाहिर ही ना करेगा, और अगर हम चाहते तो इन सब को दिखा देते, बस तो इन्हें इनके चेहरों से ही पहचान लेता और यकीनन तो इन्हें इनकी बात के ढब से, यानी इनकी लैंग्वेज, इनके एक्सेंट से पहचान लेगा। तुम्हारे सब काम अल्लाह को मालूम है, यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को मालूम कर लें, और हम तुम्हारी हालतों को भी जांचेंगे। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की, इसके बाद कि इनके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी, ये हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह का कुछ नुकसान न करेंगे, अनकरीब इनके अमाल वो गारत कर देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने अमाल को गारत ना करो। बड़ी मेहनत से तुमने रमज़ान में नेकियां की हैं, तुमने बड़ी मुश्किल से रोज़े रखे हैं, तुम बड़ी मुश्किल से रातों को जागे हो, अब रमज़ान के बाद इनको ज़ाया ना कर देना, कोई ऐसा काम ना शुरू कर देना कि किए कराए पे पानी पड़ जाए। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, फिर कुफर की हालत में ही मर गए, यकीन कर लो कि अल्लाह इन्हें हरगिज़ न बख्शेगा। बस तुम सुस्त यानी बोदे बोदे बनकर सुलह की दरख्वास्त पर ना उतरो, जबकि तुम ही बुलंद और गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल को ज़ाया कर दे। वाकई दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल कूद है, और अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें दोहरे अजर देगा और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता। ज़रा सा सुनिए इन आयतों को, अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता, अल्लाह तुमसे तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं मांगता, अल्लाह तुमसे तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे घर, तुम्हारी मिलें, फैक्ट्रियाँ नहीं मांगता। अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे, चलो बिलफर्ज वो मांग ही ले और जोर देकर मांगे, जैसे कुछ दीनदार ज़बरदस्ती चंदा वसूल करते हैं, तो इस वक्त तुम बखीली करने लगोगे और वो बखीली तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी। दिल में बुखल हो और कीना हो, अल्लाह के रास्ते में खोटा सिक्का नहीं दिया जाता। इंसान अपने पीछे कोई ना भी हो ना, तो कहते मैं किसको दूंगी, मैं किसको दूंगा, मेरे तो बच्चे भी नहीं, आए भाई बहन भी नहीं, मेरा माल कौन लेगा। अल्लाह के बंदो, तुम्हें अल्लाह का दीन नहीं दिखता? हजारों लाखों करोड़ों दुनिया में औलादों पे लगाता है इंसान, फिर भी बाद में उन्हीं की फिक्र है, उनको कुछ दे दें। किसी बाप ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत जोड़ के जाऊंगा, बच्चे ने पैसे मांगे, बीवियां भी मांगती हैं ना खर्चा पानी, बच्चे पॉकेट मनी मांगते हैं, तो बाप क्या जवाब देते हैं, फिक्र नहीं करो, जब मरूंगा तो बहुत छोड़ के जाऊंगा। आप क्या पैगाम दे रहे हैं अपने बीवी बच्चों को कि दुआ करो, हम मर जाएं तो लोग हमारी चीज़ों को लें और फिर खुश हों, माले मुफ्त दिले फिर हैं, विरसे का माल तो वैसे ही ज़ाया हो जाता है। नो पेन नो गेन, ज़िंदगी में इसको इन्वेस्ट कीजिए। जिधर लगाना है, जिसको देना है, बच्चों को, दीन को, बेटियों को, रिश्तेदारों को, गरीब फुफियों को, खालाओं को, चचियों को, मामियों को, जिंदगी में दीजिए। शायद उनकी दुआओं से आपकी उम्र ही लंबी हो जाए, शायद उनकी दुआओं से आपकी बीमारी चले। और हदीस है कि सिला रहमी से उम्र बढ़ती है, दुआएं कबूल होती हैं। तो मत ऐसा रास्ता बनाए कि लोग आपके मरने का इंतजार करें। मरने के बाद क्या मिलेगा? अपनी आंखें ठंडी करें जिंदगी में, अपने दीन को फलता फूलता देखें। खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने जिंदगियों में अपने घरों को डिवोट किया। और वाकई कराची आके मेरा इस चीज़ पे दिल खुलता है, खुश होता है दिल। कम अज़ कम यहाँ पिछले 10-15 साल से कितनी जगह आपको लोगों ने अपने घरों के इदारे बना लिया और खुद काम कर रहे हैं, वहाँ करवा रहे हैं, टीचर्स रखे हुए, और क्या चाहिए आपको? आपकी भी तो आंखें ठंडी हों। जो करना है आज कीजिए, क्या पता आपको इसकी बरकत से अल्लाह आपको दुनिया में और कितना दे दे। इसलिए फरमाया, खबरदार तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में से बस सब नहीं बस बखीली करने लगते हैं। और जो बुखल करता है तो वो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह तो गनी है और तुम फकीर हो और मुख्ताज हो। और अगर तुम मुंह फेरो यानी रूगरदानी करो, तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा औरों को लाएगा जो फिर तुम जैसे नहीं होंगे। क्या बात है! दुआ कर लें कि अल्लाहुम्मस्तहदिमना वला तस्तबदिलना। अल्लाह हमें इधर से उठा के वहाँ ना बिठा पीछे कचरे में, इधर ही काम ले ले हमसे, हम ठीक तो नहीं कर रहे, हमसे सही करा ले। फितरत का असूल है, जो काम सही करेगा उसको कोई नहीं हटाएगा। छुट्टी उनको ही नहीं मिलती जो काम ठीक करते हैं। और जो गलत करेगा तो लोग मौका देख रहे होंगे कि कोई ऐसी गलती सामने आए कि बड़ी इज्जत से इसको फारिग करें, फायर कर दें। अल्लाह के नबी से रिवायत है अबू हुरैरा की, आपने फरमाया, तीन काम निफाक के काम हैं, ख्वाह इनके करने वाला रोज़े रखे, नमाज पढ़े और ये कहे कि वो मुसलमान है। कान खड़े हुए, ये टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट आने लगी है, सीटी स्कैन है। और वो तीन काम जो निफाक के होने या पॉजिटिव होने को बताते हैं, नंबर एक, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और इसके बस अमानत रखी जाए तो खयानत करे। मुस्तद इसहाक बिन राविया की रिवायत है 59 में, अल्लाह निफाक से बचाए। सवाल है कि सहाबा की कामयाबी का राज क्या था? नंबर एक, कुफर के मुकाबले में पस्त हिम्मती नहीं दिखाई, कुफार के आगे कभी दबे नहीं, वसाइल कम होने के बावजूद अल्लाह की राह में जिद्दोजहद की, और नबी सल्लम की हर मुश्किल में उनका साथ दिया। ये नहीं कि मैसेज भी नहीं चेक किया, जवाब देना तो दूर की बात है, और देखने के बाद सुन के जान के फिर कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकती हूँ। याद रखिए, ये दर्जे जब मिल जाते हैं ना बंदे को, जब आला मुकाम मिल जाते हैं ना, तो बंदे को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। जिनके दर्जे हैं सिवा, उनकी मुश्किलें हैं सिवा। और सहाबा की खूबी क्या थी कि दुनिया की आजमाइशों से घबराए नहीं। आपने मैंने क्या करना है? कीने से बचना है, अल्लाह की राह में चलने वालों की मुखालफत नहीं करनी, अपने अमाल को ज़ाया होने से बचाना है, कुफर के आगे कमज़ोरी नहीं दिखानी, बखीली से बचना है, और अल्लाह को अलगनी मानना है। और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। सूरत मोहम्मद बड़ी ज़बरदस्त सूरत है, अभी तो हमने बड़े आराम से पढ़ ली, वक्त ही नहीं हमारे पास गहराई में जाने का। अल्लाह हमें इन सूरतों पर गौर की दावत दे रहा है। मुहासबा करते हैं, कहीं मैं दो कश्तियों की सवार तो नहीं? क्या मैं कुरान को समझ कर पढ़ती हूँ? क्या मुझे रियल में हिदायत मतलूब है? और अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे।